थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यहूदा नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से नए नियम की पुस्तकों में से यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, इस पत्री में हम देख रहे हैं कि झूठे विश्वासी या शिक्षक विधर्मी लोग किस प्रकार कलीसिया में प्रवेश करके कलीसिया में विनाश करते हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के अध्ययन में हम सब की सहायता करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से एक बार दिया है, ताकि हम आपके सामर्थ्य और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके जीवित वचन में से अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक श्रोता जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके हृदय में कार्य करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज जब हम फिर से आपके वचन में मनन चिंतन करते हैं तो आप हमारी सहायता करें, हम पर हर एक पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि प्रेरितों की कलीसिया के उत्तर काल में कुछ ऐसे मनुष्य मसीही विश्वास में प्रवेश कर गए थे जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार तो करते थे, परंतु वह मात्र ऊपरी दिखावा था। ऊपरी दिखावे के कारण कलीसिया में उन्हें ग्रहण करना तो होता था, परंतु वे वास्तव में प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते थे। वे तत्व ज्ञान में विश्वास रखते थे और उनके अनुसार आत्मा और शरीर में परस्पर संबंध नहीं था, क्योंकि शरीर अशुद्ध है और शरीर के काम अशुद्ध हैं। शरीर के कामों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, अतः शरीर कुछ भी कर सकता है। यहूदा कहता है कि वे इस प्रकार परमेश्वर के अनुग्रह को शारीरिक अभिलाषाओं में बदलकर अपमानित करते हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यहूदा की पत्री उसके एक अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, यहां पर लेखक कहता है कि एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। जंगल में इसराइल अविश्वास के कारण नष्ट हो गया था। यह एक प्रमाण है कि परमेश्वर धर्म भ्रष्टों को दंड देता है। कादेश बर्ने आकर इसराइल ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था। मेरे प्रियो, इसराइल के भेदियों ने आकर बताया कि परमेश्वर ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही वह देश है, परंतु उन्होंने यहोशू और कालेब की अपेक्षा इसराइलियों को बहका दिया कि उस देश में प्रवेश करना आत्महत्या करना है, अतः इसराइल कुड़कुड़ाने लगा। यह विश्वास न करने का एक प्रमाण है। जी हां, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा, परंतु इसराइल के अविश्वास ने उन्हें फिर से जंगल में लौटा दिया और परमेश्वर ने उन्हें 38 वर्ष जंगल में रखा, जब तक कि अविश्वासी वयस्क पीढ़ी पूरी रीति से समाप्त न हो गई। केवल यहोशू और कालेब बचे थे। उनका कहना था कि वहां उनकी संतान नष्ट हो जाएगी। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 31 पद में परमेश्वर ने उनसे कहा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। मेरे मित्रों, हम भी कभी कभी अपने बच्चों को बहाना बनाकर परमेश्वर की सेवा से इनकार करते हैं और सुनने में वह बड़ा ही उचित प्रतीत होता है, परंतु हम वास्तव में कह रहे हैं कि परमेश्वर को हमारे बच्चों की चिंता नहीं है। हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमारी क्या हमारे बच्चों की भी चिंता करके सुधी लेगा। जी हां, परमेश्वर आज भी हमारे बच्चों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। इसराइल की नई पीढ़ी ने यरदन पार करके प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया, परंतु पिछली पीढ़ी जंगल में ही नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वे विश्वास से टल गए थे। यहूदा उन्हीं का उदाहरण सबके सामने सबसे पहले देता है। आइए हम देखेंगे, विद्रोही स्वर्गदूत बंधनों में हैं। यहूदा 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। मेरे प्रियो, यह पद हमारे लिए जो सत्य प्रकट करता है वह हम धर्मशास्त्र में कहीं भी इतना स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते हैं। यहां पर लिखा है कि स्वर्गदूतों को भी दंड दिया जाएगा। पूर्व काल में कभी ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपनी यथास्थिति अर्थात अपनी मूल अवस्था को खो दी थी। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वतंत्र इच्छा दी थी। वे मनुष्यों की नाई संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं, अतः उनमें पाप का स्वभाव जन्म से ही नहीं आता है, जैसे मनुष्य पाप का स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। इन आत्मिक प्राणियों में से कुछ ने विद्रोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बेड़ियों में बांधा जाएगा। मेरे प्रियो, ये पतित स्वर्गदूत दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। जिनका विद्रोह अधिक गंभीर था वे बंदी बनाए गए हैं और उन्हें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा वर्ग स्वतंत्र है और शैतान के अधीन कार्य करता है। ये धर्मशास्त्र में व्यक्त दुष्ट आत्माएं हैं जो आज भी प्रकट होती हैं। कलीसिया के मुक्त विचारकों ने वर्षों तक स्वर्गदूतों के होने को स्वीकार नहीं किया है। हम भौतिकवादी युग में वास करते हैं और परमेश्वर तथा स्वर्गदूतों का विचार आज अमान्य एवं अनावश्यक है। वे इन बातों को अंधविश्वास कहते हैं। मेरे विचार में हगजली का कहना था कि परमेश्वर ने विश्वास विज्ञान के युग में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का अर्थ है कि इस विज्ञान युग में परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। 1963 में बेन हेच ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था न्यू गॉड फॉर द स्पेस एज, अंतरिक्ष युग का नया परमेश्वर। मैं उसमें से कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आधुनिक इतिहास में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा गया है? जी हां, आधुनिक इतिहास में प्रवेश करने वाली सबसे अधिक आश्चर्यजनक घटना जो हमारे इतिहासकारों ने तुच्छ जानी वह है मसीही विश्वास को बीच में ही समाप्त कर देना। बाइबल की कहानियां समाप्त ही नहीं हो रही, धर्म की गहरी अवस्था भी विद्यमान है। यह मनुष्य की आत्मा और मरणोपरांत उसका जीवन है। प्रचारक प्रचार कर रहे हैं और कलीसियाएं सुन रही हैं, परंतु प्रचारक और कलीसिया दोनों ही आराधनालय से संग्रहालय में पहुंच गए हैं। 50 वर्ष पूर्व धर्म हमारे संसार का जोशीला भाग था। उसके उपदेश, उक्तियां, निषेध आज्ञाएं और प्रबोधनों से प्रेस भरी रहती थी। उसके अनुष्ठान हमारे नागरिकों पर आभा तो ले आता था। मेरे प्रियो, भोजन के समय जनता का अधिकांश भाग प्रार्थना में सिर झुकाकर धन्यवाद कहता था। आज धर्म रोष का विषय है, इसलिए नहीं कि मनुष्य में गहन आस्था है और वे भावनाओं से अभिभूत होकर अपने विश्वास की रक्षा करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि वे उसकी चर्चा ही सुनना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, वे तो यह भी नहीं जानते कि उन्हें कैसा अनुभव होता है और यह भी नहीं जानते कि परमेश्वर के बारे में क्या कहें। उसके स्वर्गदूतों और आश्चर्य कर्मों के लेख के विषय में क्या चर्चा करें। अतः मसीही विरोधी या अव्यवहारिक या आम दोष लगाने वाले यह प्रतीत न हो कि वे चुप ही रहना चाहते हैं या उचित समझते हैं। मेरे मित्रों, नास्तिकवाद के कोलाहल की अपेक्षा इस मौन धारण में धर्म शीघ्रता से विलोप होता जा रहा है। बेन हेच ने 1963 में यह लेख लिखा था, परंतु तब से लेकर अब तक बहुत जागृति आई है। वर्षों से मुक्ति विचारक कलीसिया और अलौकिक बातों की मृत्यु के घंटे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 1963 ही में नीति शास्त्र के एक प्राध्यापक ने अपने एक पुस्तक में लिखा था कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया के लोग, जो अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, आज एक नया जन्म पा रहा है। यदि वह अपनी वर्तमान दशा में ही रहा तो 2 दर्जन वर्षों में वह पत्थर के समान मृतक हो जाएगा। मेरे प्रियो, किसी ने कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म संख्या में इतना अधिक बढ़ गया है कि उसका आंतरिक अनुशासन पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। उसके भीतर न तो अनुशासन है और न ही सत्य निष्ठा। यह वर्तमान मुक्त विचारक कलीसिया का चित्रण है। तथापि हाल ही में अलौकिक बातों में रुचि जागृत होने लगी है। रोचक बात तो यह है कि जागृति कलीसिया से उत्पन्न नहीं हुई है, न ही रूढ़िवादी कलीसिया से। जागृति उन कॉलेजों से आरंभ हुई है जो कभी पूर्णतः भौतिकतावादी थे और अलौकिक में कभी भी विश्वास नहीं करते थे। आज वे आत्माओं, शैतान और परमेश्वर एवं बाइबल की भी चर्चा करते हैं। अलौकिक बातों में यह रुचि अकस्मात ही जागृत हुई है और इस अंतरिक्ष युग में भी स्वर्गदूत बुद्धिमानी की बात लगते हैं। मेरे मित्रों, स्त्री पुरुष इस भौतिकवादी संसार के पागलपन पर चिंतित प्रतीत होते हैं। हम चांद पर जा सकते हैं, परंतु इस पृथ्वी पर मनुष्य के स्वभाव को वश में करने में असहाय है। यह सच है कि मनुष्य आज चांद पर जा रहा है, परंतु मनुष्य स्वयं अपने को वश में करने के लिए असहाय है। आज गुंडे सड़कों पर घूम रहे हैं और कानून को मानने वाले घरों में बंद हैं। कुछ वर्षों पूर्व यही भौतिकवादी पीढ़ी कहती थी कि मनुष्य का स्वभाव सुधर रहा है, अतः हमें नियमों की आवश्यकता नहीं है। कानून का डंडा हटा लिया गया और हमने देखा कि बाल्टी में गुलाब जल की अपेक्षा दुर्गंध युक्त कूड़ा भरा हुआ है। अपराध और अनैतिकता का बोलबाला है। एक प्रश्न पूछा जाता है, यह सब बुराइयां और अवर्णित अपराध क्यों हो रहे हैं? तो इनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? किसी ने बहुत ही उत्तम बात कही है, यदि शैतान नहीं है तो मनुष्य को शैतान की रचना करना होगा कि आज इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं उसकी व्याख्या कर पाएं। मेरे प्रियो, यह वास्तव में संभव नहीं है कि मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था का इनकार किया जाए। हम में से कोई भी एक ऐसी जाति के सदस्य हैं जो पूर्णतः भ्रष्ट है और हम शैतान के वंश में किए गए हैं, संसार में हैं, और वह हमें अपने वश में लेकर के काम कर रहा है। कभी ऐसा सोचा गया था कि नियम और प्रतिबंध हटा लेने से एक अति उत्तम और स्वतंत्र समाज उभरेगा, तथापि हाल के वर्षों के विकास के कारण मनुष्य अलौकिक बातों की ओर ध्यान लगाने पर विवश हो गया है। परंतु दुर्भाग्य से दुष्ट आत्माओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मनुष्य ने देखा कि संसार में उपस्थित बुराई के लिए उसे दुष्ट आत्माओं में विश्वास करना है, परंतु बाइबल में इसके विषय कहने को कुछ है। जी हाँ, बाइबल परमेश्वर से विद्रोह करने वाले स्वर्गदूतों की चर्चा करती है। बाइबल में उन स्वर्गदूतों का उल्लेख भी है जिन्हें अंधकार में जंजीरों से जकड़ कर रखा गया है कि उस महान दिन के न्याय के लिए वे रखे जाएं। परमेश्वर के वचन में आने वाले दंड के विषय बहुत कुछ कहा गया है। बाइबल का ज्ञान जो नहीं रखते हैं, कहने का अर्थ है बाइबल का ज्ञान नहीं रखने वाले भी न्याय के दिन की चर्चा करते हैं। उद्धार से वंचित मनुष्यों के लिए श्वेत सिंहासन का न्याय है, इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में 8 न्याय के दिन हैं। जी हाँ, इनमें से एक दंड का दिन स्वर्गदूतों के लिए है। यह दंड का दिन अंत समय में होगा। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी पहली पत्री में पौलुस पुनरुत्थान का क्रम व्यक्त करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 23 से 25 पद में, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि वह जब तक अपने बैरियों को अपने पांव तले न कर ले या न ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। अतः सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज में दुष्ट आत्माओं को दंड दिया जाएगा। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत भी, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, उन्हें बांध करके रखा गया है, एक ऐसे स्थान में अभी भी रखा गया है ताकि न्याय के दिन उन्हें खोला जाए। आप यह सोच सकते हैं कि परमेश्वर जब उसके निकट रहने वाले स्वर्गदूतों को दंड दे सकता है, तो आज वह मुझे और आपको क्यों नहीं दे सकता है? मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें भी सचेत कर रहा है कि हम अपने बुराइयों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वह हमें नष्ट करना नहीं चाहता है, वह चाहता है कि हम बचाए जाएं, हम उद्धार पाएं। जी हाँ, आज आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और अपने आप को प्रभु के निकटता में लाएं, ताकि आप दंड के नहीं परंतु उस अनंत जीवन के वारिस बन सकें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सिंहासन